महाबंध पुस्तक चौथी लेक्चर नंबर 4। ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सौवसामूलं, भूतबलिप्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकं, महाधवलविख्यातं महाबंधम नमाम्यहम्। आचार्य श्री भूतबलि भट्टारक प्रणीत यह महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जो षटखंडागम का 6 नंबर का खंड है। इसमें तृतीय अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और चौथी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 14 पर हम आगे 14 हमारी स्वामित्व की प्ररूपना चल रही, उत्कृष्ट अनुभाग बंध के स्वामी के यह चर्चा चल रही है। उसमें हम अभी सूक्ष्म सांप्राय संयत जीवों में देखने जा रहे हैं, नीचे से दूसरा पैराग्राफ। तो सूक्ष्म सांप्रायिक जीवों में यहाँ 4 लिखा है, वो 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ मोहिनी तो बनता नहीं है। तो 3 घाती कर्म, ऊपर भी घादी 4 लिखा है, वो घादी 3 करना। तो सूक्ष्म सांप्रायिक जीव, लास्ट टाइम किया था हमने, 3 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। देखो ओघ में तो यहाँ तो जघन्य होता है, सूक्ष्म सांप्राय की अपेक्षा उत्कृष्ट होना चाहिए। तो सूक्ष्म सांप्राय में उत्कृष्ट कौन करेगा? उपशम श्रेणी उतरने वाला करेगा अंत में। तो अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर गिरने वाला उपशामक उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। उसके जघन्य का तो चढ़ने वाला अंतिम अनुभाग बंध वाला होगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, अभी ये प्रशस्त प्रकृति है, यानी यहाँ पर तो प्रशस्त ही बन रहा है, तो उसका तो अंत में, शपक के अंत में होगा। उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब संयता संयतों में 4 घाती कर्मों के, अभी अप्रशस्त है ना ये तो सभी, तो अधिक संकलेश कब होगा? मिथ्या तो के सन्मुख। तो 4 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? मिथ्यात्व के अभिमुख, साकार, जागृत, उत्कृष्ट संकलेश युक्त, उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर तिर्यंच और मनुष्य उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब यहाँ संगी पंचेंद्रिय लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो तो संयता संगी पंचेंद्रिय के होता है और वो पर्याप्त होने पर ही वो पाशा गुण स्थान होता है, इसलिए बाकी कंडीशन यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं थी। समझ में आई ना बात? अब वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, यहाँ तो मात्र उच्च गोत्र ही बन रहा है और संहिता संयत है, तो नाम कर्म की भी जो प्रकृतियां बन रही है, तो उनके उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार, जागृत, सर्व विशुद्ध। अब अधिक से अधिक विशुद्धि कब होगी? तो संयम के अभिमुख और अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। क्योंकि मनुष्यों को ही संयम होगा, संयता संयत भले तीर्यंश है परंतु यहाँ तो मनुष्य को लेना है। ना ना ना, वेदनीय इन जनरल है, तो यहाँ साता की बात,
साता ही लेना है ना।
वेदनीय कर्म इन जनरल, तो यहाँ बनने वाली साता भी बनती है, असाता भी बनती है। तो यहाँ उत्कृष्ट अनुभाग किसका होगा, साता का कि असाता का? तो साता का, यहाँ पर तो वेदिनी का भी यही उत्कृष्ट कहलाएगा। आप कुछ पूछना चाहते
थे? हाँ
हाँ हाँ, दोनों को लिया मनुष्य, क्योंकि संयम के अभिमुख वाला है ये, सातवें गुण स्थान में जाने वाला जीव है, पांचवें से सातवें में जाने वाला, पांचवा गुण स्थान वाले है, तो पांचवें गुण स्थान में विशुद्ध सातवें में जाने वाला, वो पांचवें में ही है, सातवें में गया नहीं अभी। वो लिखा ना संयम के अभिमुख। हाँ
यहाँ पे तो साता असाता दोनों का भी बंद है,
ये सही। हाँ, तो यहाँ असाता का जितना उत्कृष्ट होगा उससे साता का उत्कृष्ट अधिक है, तो यहाँ के वेदनीय में वो साता को ही लेना है। बोले दोनों बनती है यहाँ पर। और ऐसे भी जिस किसी को भी बनती है साता या असाता उत्कृष्ट, मतलब साता का ही उत्कृष्ट है वो, तो अभी जब हम अल्पभूतव देखेंगे ना कौन से प्रकृति से कौन सी प्रकृति का अनुभव उत्कृष्ट है जगत में, उसकी बात वो बाद में आएगी बात। अब आयु कर्म के, यह तो देवायु ही बनती है, उत्कृष्ट अनुभव बंध का स्वामी कौन है और वो कैसे, तो प्रशस्त आयु है, तो तत्प्रायोग विशुद्धि वाला लेंगे, तो तत्प्रायोग विशुद्ध, क्योंकि अति सर्व विशुद्धि में तो बनती नहीं आयु। सोलवे स्वर्ग तक जाता है, सोलवे स्वर्ग तक। हाँ, पांचवे गुण स्थान वाला वहां तक जाएगा। संयता संयत के लिए वही तक लिमिट है, इसलिए तीरेंज मनुष्य दोनों को लेंगे, क्योंकि तत्प्राय की विशुद्धि ली ना, सर्व विशुद्ध पांचवे गुण स्थान में तो मनुष्य के होते हैं जो संयम के संग, वहां तो आयु का बंध तो होता ही नहीं है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभव बंध का स्वामी कौन है, तत्प्रायोग विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभव बंध में अवस्थित अन्यतर तीर्यंच और मनुष्य, ये 22 सागर की आयु बांधने वाला है, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभव बंध का स्वामी है। अब असंयतों में, ये संयम मार्गणा की चल रही थी ना, उनमें से असंयत की बात चल रही है। असंयतों में चार घाती कर्मों का भंग मत्स्य ज्ञानी जीवों के समान है, यानी हमने देखा जैसे ओघ में देखा था, चारों गति का है, संगी पंचनीय वो सब पर्याप्ति से पर्याप्त, सर्व सुकृत संकलेश वाला, उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित वगैरह वगैरह सब लगा लेना। अब असंयतों में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो संयम के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य असंयत समय दृष्टि, असंयत मार्गणा है तो पहले से चार गुण स्थान, असंयतों में भी विशुद्धि कब ज्यादा है तो चौथे से सातवें में जाने वाले का, तो उसके अंतिम से तब उसका गुण स्थान तो चौथा ही कहलाएगा करण लब्धि के लास्ट में। तो उत्कृष्ट उसमें चौथे से सातवें में जाने वाले की विशुद्धि ज्यादा है, पहले से सातवें में जाने वाले की अपेक्षा चौथे से सातवें के अभिमुख है उसकी विशुद्धि ज्यादा है। हाँ उसमें कुछ नहीं।
यहाँ पर असंयतों में चार घाती कर्म की बात बताई,
हाँ।
तो उसमें चौथा गुण स्थान आएगा कि नहीं
आएगा, पर उत्कृष्ट बंध मिथ्या दृष्टि को होगा।
अच्छा,
क्योंकि घाती कर्म अप्रशस्त है और उसका उत्कृष्ट बंध अति संकलेश में होगा।
अच्छा,
तो अति संकलेश मिथ्या दृष्टि के होगा,
तो इसलिए उसको मत्स्य ज्ञानी जीवों के समान बताया। और आगे,
हाँ,
और आगे जो है वेदिनी नाम गोत्र की बात है, उसमें संयम के अभिमुख यानी वो तो सम्यक दृष्टि होना चाहिए।
चौथा गुण स्थान लिखा है ना नीचे, असंयत समय दृष्टि सेकंड लाइन में, संयम के अभिमुख उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य लिया असंयत समय दृष्टि, यहाँ पर भी अन्य किसी गति का जीव नहीं लिया, चौथे गुण स्थान वाला जो संयम के अभिमुख है उसको लिया। हाँ बोलो प्रश्न।
उत्कृष्ट आयु के साथ उत्कृष्ट अनुभाग का बंध किया देव का, और किसे घातायुष हो गया, तभी अनुभाग की कटौती हो जाएगी।
अनुवाक्य क्या?
कटौती हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा 33 सागर वाला 10,000 वर्ष भी कर
तो उस सत्व में चला जाएगा, बंध में नहीं।
नहीं, सत्व पर सत्व घटेगा,
सत्व घटेगा तो वो तो फिर वो उसका विषय अलग है। घटेगा, घट सकता है, स्थिति भी घटी तो अनुभाग भी घटेगा उसका। पर बंध के प्रकरण में उसकी चर्चा नहीं करेंगे।
नहीं, तो खाली जबरन में रखी
उत्कृष्ट अनुभाग बनकर स्वामी, आयु कर्म का भंग मत्स्य ज्ञानी जीवों के समान है, यानी नरकायु की बात है, यानी नरकायु की अपेक्षा उत्कृष्ट कहेंगे तो हाँ, तत्प्रागे संकलेश वाला ऐसा कहेंगे, 33 सागर की आयु बांधने वाला।
तो
यहाँ तो असंयत में मनुष्य और तीर्यंश को लेना
है, पर असंयत में देवायु का तो अच्छा 33 सागर का बंद होता है,
असंयत में 31 सागर का होगा,
31 सागर का
द्रव्यलिंग, और ये 33 सागर का है। वो कल बात हुई थी ना अपनी मत्स्य ज्ञानी में, हमने इसकी चर्चा की थी। हाँ, 13 नंबर के पेज पर। चलो, अरविंद के यहाँ सब नंबर तैयार होते थे, यहाँ पर मत्स्य ज्ञानी श्रुता ज्ञानी में लिखा था। देखो, पंचेंद्रिय संगी मिला क्या आपको 13 नंबर के पेज पर, नीचे से दूसरा पैराग्राफ, नीचे से तीसरी लाइन, पंचेंद्रिय संगी साकार जागृत तत्प्राग्य संकलेश युक्त। हमेशा आयु में तत्प्राग्य शब्द लगाते हैं, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, अन्यथा तीर्यंश और मनुष्य, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। यहाँ तो इन जनरल यानी मूल प्रकृति पर घटाते, पर हमको मालूम है नरकायु की बात। हाँ, लिख लिया है, क्योंकि तत्प्राय के संकलेश के हैं ना, बाकी तीन जो आयु है वो तत्प्राय की विशुद्धि में बनती है, ये तत्प्राय के संकलेश। अब लेशा मार्गणा की बात चलेगी यहाँ से, ये संयम मार्गणा हो गई। कृष्ण लेशा वाले जीवों में 4 घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, अन्यतर 3 गति का जीव, देवगति को छोड़ दिया तो देवों की कृष्ण लेशा होती है
तेजल।
हाँ, भवनात्रिक में अपर्याप्त में होती है, परंतु पर्याप्त होने पर इतना संकलेश हो सकता है, अभी तो ये बिल्कुल कम होगा यहाँ पर। तो यहाँ 3 गति के जीव लिए, देव बिना 3 गति, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, अन्यतर नारकीय असंयत समय दृष्टि। देखो, ये चौथे गुण स्थान में तो मनुष्य तीर्यंचों को भी कृष्ण लेशा हो सकती है, नहीं होती ये बात नहीं है, परंतु कृष्ण लेशा में अति विशुद्धि कौन, क्योंकि मनुष्य तीर्यंचों की अति विशुद्धि हो जाएगी तो शुक्ल लेशा तक पहुंचेगा। चौथे गुण स्थान वाला मनुष्य अति विशुद्धि में तो ऊपर की शुक्ल लेशा में जाएगा, नारकी कितनी भी उसकी विशुद्धि हो जाए, कृष्ण लेशा वाला हमेशा कृष्ण लेशा वाला रहेगा, इसलिए कृष्ण लेशा वाला लिया नारकी। और उसके भी पहले गुणस्थान से चौथे गुणस्थान की विशुद्धि बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ क्या लिखा, सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, अन्यतर नारकी असंयत समय दृष्टि। देखो, इसी में पता चलता है, भले मिथ्या दृष्टि असाता का उत्कृष्ट बंध कर रहा है और समय दृष्टि साता का बंध कर रहा है उत्कृष्ट, पहले यानी नारकी में अभी कंपेयर करेंगे तो भी असाता के उत्कृष्ट से साता का उत्कृष्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ उसको लिया। उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का, ये समझ में आ रही है ना बात। हाँ, आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो कहते साकार जागृत तत्प्राग्य संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित, अन्यतर तीर्यंचार मनुष्य मिथ्या दृष्टि जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंधक का स्वामी है, क्योंकि वो तो संकलेश है तो नरकायु बांध रहा है। नारकी की कब आयु बांधेगा? तत्प्राय को विशुद्धि में, क्योंकि वो मनुष्य तीरियन चाय बिना अन्य आयु बांधता नहीं है। इसलिए यहाँ कृष्ण रेशा में आयु का, हाँ आयु का उत्कृष्ट बंध करने वाला मनुष्य तीरियन चलिया, स्वामी मनुष्य तीरियन चाय और वो बांध रहा है नरकायु। इसी प्रकार नील और कापोत रेशा वाले जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है यहाँ नारकी के उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करना चाहिए। ये तो चार घाती के लिए और तीन अघाती के लिए,
चार घाती
और
के लिए
आयु का तो उत्कृष्ट बंध मनुष्य तीरें से ही करेगा। नील कपोत लेशा वाले नर का आयु, आयु में नरकायु को नहीं लेना,
नरकायु को नहीं लेना
आयु, ये नारकी को नहीं लेना, नरकायु को लेना नारकी को नहीं लेना। यहाँ क्या किया देखो, इसी प्रकार नील और कापुत वेशा वाले जीवों के जानना चाहिए, यह लिखा, इतनी विशेषता है कि यहाँ नारकी के उत्कृष्ट स्वामित्व का कथन करना चाहिए।
तो गाती को भी
सात सात कर्मों के लिए नारकी को ही उत्कृष्ट होगा, जैसे ऊपर बताया, और आयु मनुष्य के लिए इनके समान ही होगी। ऊपर क्या लिखा है, एवं नील कावुणम नवरी नेरियस कादवम, अच्छा यानी कृष्ण लेशा वाले में हमने तीन गति वाला लिया था, अब नील और कापोत में क्या लेना है,
वही लेना है
आयु के लिए मनुष्य के लिए देना है
ना। कृष्ण लेशा वाले में चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट करने वाला कौन था,
गति का लिया था
तीन गति के,
यहाँ पे नारकी को।
अब यहाँ क्या लेना है,
नारकी को ही लेना,
चार घाती के लिए नारकी को ही लेना है। वेदिनी नाम गोत्र के लिए किया, किसको लिया था,
नारकी को लेना,
वो तो वो नारकी असंयत, यहाँ पर भी नारकी असंयत ही लेना है।
तो चार घाती के लिए घाती के लिए तो मनुष्य तीर्यंच,
देखो देखो कृष्ण लेशा वाला मनुष्य तीर्यंच चार घाती का उत्कृष्ट कर रहा है, तो नरक गति का भी उत्कृष्ट बांध रहा है। पर हमने स्थिति की अपेक्षा आपको याद होगा तो
अच्छा।
नील और कपोत लेशा वाला मनुष्य तीर्यंच वो स्थिति की अपेक्षा अंत कोड़ा कोड़ी से अधिक स्थिति नहीं बांधता, ये आपको याद होगा तो, भले ज्ञानावरण का भी और प्रशस्ता भी बंद अंत कोड़ा कोड़ी से ज्यादा नहीं है, तो उसका अनुभव भी उत्कृष्ट नहीं होगा, ख्याल में आती बात। इसलिए नील और कपोत में कृष्ण लेशा वाले में तीन गति का जीव लिया, यहाँ नील और कपोत लेशा में उत्कृष्ट अनुभाग बंद करने वाला नारकी अकेला होगा। वेदिनी नाम गोत्र में तो नारकी को लिया ही था वैसे ऊपर, वो तो उसकी तो कोई बात नहीं है, तो चार घाती कर्मों के लिए नारकी को ही उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए। यानी बाकी आयु में और तीन अघाती के लिए तो सेम ही है, वो तो ऊपर जो लिया था वैसा ही था, यानी केवल यहाँ चार घाती के लिए ऐसा लिखना, तीन अघाती के लिए तो नारकी तो था ही ऊपर ही। हाँ आगे पीत लेशा वाले, ये समझ में आई ना ऊपर की बात, पीत लेशा वाले जीवों में, अब कृष्ण नील कपोत में तो तीन गतियां ली, अब शुभ लेशा में भी तीन गतियां लेना है, नर को छोड़ पीत लेशा वाले जीवों में। अब देखो आपको स्थिति की अपेक्षा बात करो, पीत लेशा वाले मनुष्य और तीरंज, अभी वो नील कपोत वाले भी अंत कोड़ा कोड़ी के करते हैं, तो ये भी उतना ही करेंगे, तो देव ही उत्कृष्ट करेंगे, समझ में आई बात। तो देखो पीत लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंधकार स्वामी कौन है, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव मिथ्यादृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अन्यतर देव यानी पीत लेशा वाले देव, उसमें भवनत्रिक भी हो सकते हैं, सौधर्मा ईशान वाले भी हो सकते हैं। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान है,
यानी
अप्रमत्त जीवों को लेना,
मनुष्य को ही,
मनुष्यों को ही, तीरियंस को भी, अप्रमत्त गुणस्थान वाले। क्योंकि वहाँ विशुद्धि ज्यादा है ना, पीतलेश्वर में सातवें गुण स्थान में सर्व विशुद्धि वाले इसका उत्कृष्ट बंध करेंगे। आयु कर्म का भंग ओघ के समान है, आयु में हाँ
पीतलेशा
क्योंकि पीतलेशा वाले में कोई मनुष्य या देवायु दो ही बनती है, पीतलेश वाले तिरंजयु का भी बंद कर सकते हैं, परंतु यहाँ उत्कृष्ट की बात है तो देवायु का होगा। ओग के समान है देवायु का उत्कृष्ट, मनुष्य बांधने वाला पन वो तो अप्रमत्त
होगा,
अप्रमत्त गुणस्थान वाला छठे से शुरू हुआ, सातवें में उसकी जब तत्प्राग विशुद्धि है वहाँ आयु का बंध चल ही रहा है, तो वहाँ पर उसका अनुभव उत्कृष्ट होगा।
अप्रमत्त वाला पितृसे का दूर सागर से अधिक आयु नहीं बांधेगा,
उनका ये कहना है अप्रमत्त वाला पीतलेशा में आयु बांध रहा है तो पीतलेशा वाले देवों की बांधेगा, दो ढाई सागर यानी साधिक वाली बांधता बनते बनते के समय तो दो आयु दो सागर की बनती है।
तो ऐसा है जो लेशा में आयु बनती है वही लेशा में
वहाँ क्यों उत्पन्न होगा बाद में उस लेशा वाले देवों में, कृष्ण लेशा में देवायु बांध सकते हैं नहीं वो बात नहीं, वो भवनत्रिक में जन्मेगा। हमने देखा ना
साधु वही लेशा में उत्पन्न होंगे ऐसा
हुआ, हाँ ऐसा ही हाँ जंगल ऐसे ही पसंद
ऐसा ही है, पर वो कृष्ण लेशा में मरेगा नहीं, मरेगा कौन सी लेशा में, भवनत्रिक में जाने वाला भवनत्रिक में जाने वाला कौन सी लेशा, मरण भी अशुभ लेशा में होगा,
नहीं नहीं भवनत्रिक में जाने वाला कापक से अरे अशुभ लेशा में नहीं मरेगा, मुझे इसे ख्याल है
बंध कृष्ण नील कपोत में कहीं पर भी हो सकता है, मरण कौन सी लेशा में होगा,
मरण तो
हाँ वहाँ बाद में पीतलेशा है तो पीतलेशा में मरेगा और वहाँ पहले समय में कृष्ण नील कपोत हो जाएगा,
मेरे को
क्योंकि मुझे यह याद है
कि जो लेशा जो लेशा में आयु का बंध होता है वही लेशा में मरण वहाँ पर उत्पन्न होता है,
उसका एक समय में कृष्ण लेशा हो जाएगी
हाँ।
ही समझता है
नहीं पुण्य भवनत्रिक में जाते समय भी यही है रूल, क्योंकि जीव कांड में हमने देखा था जीव कांड में वहाँ तो असंगी को भी पीतलेशा इसलिए घटित की थी कि पीतलेशा ने भवनत्रिक की आयु बांधी हाँ। पर यहाँ उसकी बात नहीं लेनी हमको, वो कृष्ण नील कपोत में बांधता है, महाबंध में असंगी जीवों को पीतलेशा स्वीकार नहीं है, तीन अशुभ लेशा होगी वहाँ, शुभ लेशा नहीं होती सीधा है। एकदम कितना फर्क पड़ता है देखो इसी प्रकार पद्मलेशा वाले जीवों के जानना चाहिए, इतनी विशेषता है कि इनमें चार घाती कर्मों का भंग सहस्रार कल्प के समान है, वो तो पीतलेशा वाले बांधते हैं यहाँ तो पद्मलेशा तो फिर से सहस्रार कल्प के समान है, यानी चार घातियों का उत्कृष्ट कौन करेंगे तो अन्यतर देव, पर अन्यतर देव में कौन है, सनत कुमार से लेकर सहस्रार तक के हैं, और आयु का भी ऐसा ही पद्मलेशा वाला अप्रमत्त वाला उत्कृष्ट बंद करेगा, वेदनीय नाम गोत्र के लिए भी ऐसा ही है, वो तो है वो अप्रमत्त ही है, चार घाती कर्मों के लिए डिफरेंस है, वहाँ सौधर्म ईशान तक के देव लिए और यहाँ ऊपर अभी हम 16 नंबर के पृष्ठ पर आते हैं। देखो शुक्ल लेशा वाले जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर देव। अभी आनंद से लेकर जो शुक्ल रेशा वाले है, वहां तो शुक्ल रेशा का जगन्य अवश्य भी है, वहां पर उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का मिथ्या दृष्टि है। देखो मिथ्या दृष्टि मनुष्य शुक्ल रेशा वाला होगा, वो इतना उत्कृष्ट बंध नहीं कर सकता। होते पर समय दृष्टि के विशुद्धि ज्यादा है, इसे मिथ्या अति संकलेश मिथ्या दृष्टि के होगा, इसलिए उसको लिया।
जब पे पीत और पद्मल ऋषिया में उत्कृष्ट अनुभाग चार घाती कर्म का देव को लिया और ये शुक्ल ऋषिया में भी देव को लिया,
तो पद्म में भी देव को ही लिया
ना, क्योंकि वो शुक्ल ऋषिया में अंतकोड़ा कोड़ी का इलाज करेगा।
और मनुष्य कितना करता है?
नहीं, देव पीत और पद्मल ऋषिया में 20 कोड़ा कोड़ी का करेगा
स्थिति।
हाँ स्थिति।
हाँ।
और शुक्ल ऋषिया में देव वो अंतकोड़ा कोड़ी का ही करता है।
हाँ।
तो उसमें अनुभाग कम लगेगा ना।
हाँ, आप अगर पीत पद्म के साथ कंपेयर करें तो कम बनेगा। देखो क्या कहते हैं वो, देखा ना, अन्यतर देव यानी शुक्ल रेशा वाला देव मिथ्या दृष्टि शेष कर्मों का भंग उग के समान है, यानी वेदनीय नाम गोत्र और आयु के लिए अप्रमत्त वाला लेना।
नहीं, वेदनीय नाम गोत्र का शुक्ल रेशा में ऊपर के गुणस्थान
में जाएगा ना, शपक। ओ यस, शपक लेना, शपक लेना, आयु को अप्रमत्त लेना,
आयु वेदनीय।
हाँ, उग के समान लिखा है ना, पीत पद्म के समान नहीं लिखा, उग के समान लिखा। वेदनीय नाम गोत्र के लिए क्षपक दसवा गुण स्थान वाला, क्षपक सूक्ष्म सांप्राय, और आयु के लिए अप्रमत्त, क्योंकि ऊपर आयु बनती नहीं है। अब अभव्यों और मिथ्या दृष्टि जीवों में मत्य ज्ञानी जीवों के समान भंग है। इतनी विशेषता है कि मिथ्या दृष्टि में हमने संयम के सन्मुख वाले को वेदनीय नाम गोत्र को लिया था, यहाँ सम्यक्त के सन्मुख नहीं कह सकते, संयम के सन्मुख नहीं सकते, क्योंकि अभव्य है। तो कहते इतनी मिथ्या दृष्टि में कह सकते हैं, इतनी विशेषता के अभव्यों में वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है, तो संगी पंचेंद्रिय साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अथवा दूसरी बात क्या, अथवा पहले तो चारों गतियों को लिया, अथवा द्रव्य संयत मनुष्य उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। द्रव्य संयत ऊपर जो जाने वाला जो शुक्ल दिशा वाला द्रव्य संयत भी ले सकते हैं। द्रव्य संयत का मीनिंग ऐसा है, द्रव्य लिंगी मुनि, यानी उसके तो संयम तो है ही नहीं है और संयम के अभिमुख भी नहीं है, परंतु उसने तो मुनि दीक्षा ली हुई है, ऐसा जीव लिया। अभी ऐसा जीव हम प्रायोग्य लब्धि तो अभव्यों के भी होती है, तो प्रायोग्य लब्धि के जो विशुद्धि के स्थान है उतने तो सामान्य मिथ्या दृष्टि के भी होते हैं।
नाम गोत्र
उसको प्रायोग्य लब्धि नाम देना भी उचित नहीं है, परंतु उतनी विशुद्धि होती, बस इतना इतना ही लेना। भव्य को तो वो के समान सभी हो गए ना, अभव्य उनकी मार्गणा नहीं है। मिथ्या तो देखो, हाँ ओग के पहले पहले ओग में बता दिए, वो भव्य और आहारक जीवों में ओग के समान है, निकाल पहले बता चुके, 8 नंबर का पृष्ठ है। जो जो मार्गणा पहले इसके समान है बताए ना, उसको बाद में फिर दोबारा रिपीट नहीं करते। यहाँ लिखा ना, चक्षुदर्शनी अचक्षुदर्शनी भव्य संगी और आहारक जीवों के जानना चाहिए, मिला आपको? तीसरी लाइन में, लास्ट में, चौथी लाइन में है भव्य, यानी भव्य का वो के समान है। जो नहीं बताया था अभव्य का, वो मिथ्या दृष्टि के समान है। मिथ्या दृष्टि और अभव्यों का मत्य ज्ञानी के समान है। मिथ्या दृष्टि के लिए तो संयम के अभिमुख कहेंगे, और अभव्यों के लिए तो तत्प्रायोग्य भी नहीं, सर्व विशुद्ध, अभव्य के लिए सर्व विशुद्ध, तत्प्रायोगिक शब्द अभव्य के लिए नहीं डालना,
सर्व विशुद्ध,
सर्व विशुद्ध। अब आयु की बात नहीं, आयु के बाद जैसे मिथ्या दृष्टि की थी वैसे यहाँ पर है, कौन सी, वही द्रव्यलिंगी जो 31 सागर वाली नहीं, अभव्य में तो नारकी को लेना, नरकायु बांधने वाला लेना, नारकी को नहीं लेना, नरकायु बांधने वाले मनुष्य तिरंज को लेना। अभव्य में उत्कृष्ट अनुभाग आयु का नरकायु का होगा, जैसे हमने मत्स्य ज्ञानी में देखा था वैसे ही होगा, मत्स्य ज्ञानी में हमने नरकायु को ही लिया था ना, पेज नंबर 13 नरकायु को ही बांधने वाला ही लिया था। आयु में नरकायु क्या आवाज ज्यादा है,
क्योंकि वीर्य गुण का कार्य क्या है, पर्याय में स्वरूप की रचना करना, तो वहाँ पे वीर्य गुण
कुछ अभव्य किसी कर्म के कारण नहीं है।
अच्छा,
उसका पारिणामिक भाव अभव्य तो पारिणामिक भाव है, नहीं तो वीर्यांतराय के कारण वो अभव्य हुआ ऐसा माने, तो वीर्यांतराय का क्षोभक्षम ज्यादा हुआ है नहीं, उघाड़ अधिक हुआ तो अभव्य उनसे भव्य होगा क्या नहीं होगा, ख्याल में है ना, किसी कर्म के कारण नहीं है वो, उसकी अपनी योग्यता है, कभी सम्यक को प्राप्त करने वाला नहीं, कभी अभिमुख होने वाला नहीं, वो तत्व भी सुना उसने वो सब चलेगा, अपन निर्णय तक नहीं पहुंचेगा, स्व सन्मुख नहीं होगा, ऐसी उसकी योग्यता पड़ी है अंतर में। हम तो हमेशा निमित्त की तरफ देखते हैं, निमित्त से कुछ होता नहीं, यही मुख्य नक्की करना है, हाजिर होना अलग बात है, परंतु निमित्ताधीन दृष्टि से अभिप्राय में गलत
अभिप्राय में
ये बिल्कुल कहीं पर भी, जो कहीं पर भी कार्य की बात होती है, जिस किसी की रचना यानी जिस किसी की पर्याय हो रही है, हम पहले पहले निमित्त क्या हो, निमित्त क्या, निमित्त से होता है ऐसी मान्यता कहीं ना कहीं अन्यत्र यानी डीप डाउन अंदर पड़ी है। हाँ, वो होना निमित्त का कथन हम कर्णान योग में तो निमित्त का कथन बिल्कुल कहेंगे कि क्या है, कारण क्या है, ऐसा भी पूछेंगे तो हम निमित्त का नाम लेंगे, परंतु मूल में उपादान को स्वीकार करके फिर निमित्तों की चर्चा होती है, यानी वो भूल कर नहीं करना है। देखो ये कहाँ
सिद्धांत भूल जाते हैं
एक अभिप्राय में भूल होती है ना तो सभी तो, की बात
मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता है, यानी कर्म के कारण जीव दुखी है, तो अंतराय का वो क्षोभक्षम अधिक है, तो
नहीं वो तो
अंतराय कर्म का
क्षोभक्षम अधिक है, आवरण जाता है,
आवरण वही तो कर्मों का आवरण अधिक है,
उससे कोई अभव्य नहीं है, उसके कारण अभव्य रुका है ऐसा नहीं है, उसकी अपनी योग्यता नहीं है।
मैं तो कहूंगा कि बार बार हम द्रव्य दृष्टि रखेंगे, मतलब द्रव्य का स्वभाव क्या है देखेंगे, तो ये सारे प्रश्न उड़ जाते हैं जो इसको आदत है, कभी भी मूल को
मूल निमित्त उपादान की जो चर्चा है ना उसको बहुत सीरियसली और बहुत गहराई से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल हर जगह वो तो भले निमित्त का कथन करेंगे, निमित्त को जानेंगे, परंतु निमित्त से कार्य होने का बिल्कुल निषेध है, कारण कार्य कारण कार्य रहस्य पढ़ो, उसमें कितना विस्तार से चार पांच
निमित्त निमित्त उपादान का 1100
निमित्त उपादान की वो बुक भारी जी के बुक के ऊपर मैंने भी लेक्चर दिया, वो साइट में सारे वो पुस्तकों में पढ़ा है, साइट में पढ़ा है, पर अपने बुद्धि में नहीं आता है।
मैं देता हूँ,
वो कभी कभी आ भी जाता है, मगर पता नहीं डेली में नहीं आता।
नहीं ठीक है, परंतु जब चर्चा करने बैठे तो बिल्कुल वो तो सही, कहना बात अलग है, हम एक दूसरे से बोलेंगे भी निमित्त की भाषा में, उसका निषेध नहीं है, क्योंकि वो तो लौकिक में तो निमित्त की बात हम बोलेंगे, ऐसा कि समय दृष्टि हुआ तो निमित्त से नहीं बोलेगा, ऐसी थोड़ी बात है, मान्यता की बात है। जो हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो हम उसकी अपेक्षा से देख रहे हैं ना। आगे बढ़े अभी। वेदक समय दृष्टि जीवों में ये सम्यक मार्गणा चल रही है। अभी निबोधि की बात तो पहले बता चुके थे। तो चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब अधिक संकलेश कब होगा वेदक समय दृष्टियों में? चौथे गुणस्थान वाला जब मिथ्यात्व के सम्मुख, कोई भी जीव नहीं लेना मिथ्यात्व के सम्मुख, ये पांचवे से भी जा सकता है, छठे से भी जा सकता है, चौथे वाला। तो चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्यात्व के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत समय दृष्टि जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। बिल्कुल बिल्कुल चौथे ही वाला नहीं, उसके तो विशुद्धि ज्यादा है। क्या क्या
नहीं तो वेदक
शासाधन में भी, पर वो उसको वो वेदक समय दृष्टि कहाँ है? हमारी मानना वेदक समय दृष्टि की है। एक पकड़ते तो दूसरे चुड़ते हैं। हाँ, शेष कर्मों का भंग परिहार विशुद्धि संयत जीवों के समान है, यानी वेदिनी नाम गोत्र और आयु सबके लिए अप्रमत्त। शायिक समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अब ये तो मिथ्यात्व में जाने वाला तो है ही नहीं है, तो उसके साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त, तत्प्राग शब्द आप बार बार लगाते हैं वो बराबर नहीं है। शायिक में कितना भी संकलेश क्यों नहीं, वो तो मिथ्यात्व में तो जाने वाला ही नहीं है, तो उसको उत्कृष्ट ही कहेंगे हम। शायिक के लिए उत्कृष्ट नहीं, तत्प्राग अन्यत्र कहीं आएगा, अपन आयु में तो आता ही आता है। देखो अगर हम मार्गणा लेते हैं तो इसकी संकलेश इसके लिए तो सर्वोत्कृष्ट ही है, अन्य लोगों की अपेक्षा से अगर हम कहेंगे तो उसको तो सर्व संकलेश नहीं कहेंगे, केवल चौथे गुणस्थान वाला लेंगे तो उसमें वेदक सम्यक वाला होगा उसका तो संकलेश ज्यादा होगा, शायिक वाले को इतना संकलेश नहीं होगा, तत्प्राग नहीं कहना। शायिक सम्यक तो हमारी मार्गणा है। फिर से पढ़ते, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत समय दृष्टि है। ये चारों गति में क्षायिक समय दृष्टि है, तीर्यंज क्षायिक समय दृष्टि भोग भूमि का है, नारकी क्षायिक समय दृष्टि पहले नरक का है, देव क्षायिक समय दृष्टि कहीं भी हो सकता है, मनुष्य क्षायिक वहाँ होता ही नहीं, बहुनत्रिक में सौधर्म से लेकर तो चौथे गुणस्थान के योग्य उसके जो सर्व संकलेश है उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। शेष कर्मों का भंग ओघ के समान है, क्योंकि तीन अघाती का उत्कृष्ट तो क्षपक सूक्ष्म सांप्राय के है, आयु का तो सातवें गुणस्थान वाले के है। अब उपशम समय दृष्टि जीव में यहाँ आयु का बंध नहीं है, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्यात्व के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का असंयत समय दृष्टि जीव उपशम सम्यक्त्व है और यहाँ से वो मिथ्यात्व में जाने वाला जीव है, उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। अब यहाँ पर भी सूक्ष्म सांप्राय लेना, पर वो तो उपशामक लेना। अंतिम उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर उपशामक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब सासाधन समय दृष्टि, तो सासाधन समय दृष्टि जीव इनका ज्यादा संकलेश कब होगा? वो तो सारे मिथ्या तो के सन्मुख वाले, पर फिर भी अधिक से अधिक संकलेश वाला लेना। तो सासाधन समय दृष्टि जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? यहाँ पर भी चारों गतियों के लेंगे, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्यात्व के अभिमुख, यानी सासाधन है जो अभी अभी सम्यक्त्व से गिर कर आया है और अभी वो मिथ्यात्व में जाने वाला है, तो वहाँ उसकी संकलेश ज्यादा हो गए। उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है।
यहाँ पे एक समय के लिए जो सासाधन में जाता है उसको उत्कृष्टता के छियावली के लिए जाता है उसको उत्कृष्टता,
शायद छियावली वाला होगा उत्कृष्ट, क्योंकि अभी अभी जो एक समय के लिए आया है उसकी तो विशुद्धि होगी, वो इतना सासाधन के लिए सर्व संकलेश वाला। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत और नियम से सर्व विशुद्ध अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है, यानी जो अभी अभी सासाधन में आया है वह शुरुआत में उसकी विशुद्धि ज्यादा होगी। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो साकार जागृत तत्प्रायोग विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मनुष्य आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। हमने देखा ना द्रव्य लिंगी है, अभी वो सासाधन में आया है, मनुष्य लिया है, 21 सागर की आयु बांध सकता है, सासाधन में नरक आयु बांधती नहीं है, नरक गति भी नहीं बनती है। मैंने द्रव्य लिंगी मुनि को यहाँ ले सकते हैं सासाधन वाले, ग्रह एक 31 सागर की आयु बांधेगा। इक्कीस सागर की देवायु बांधने वाला यहाँ नरकायु नहीं है, और तीर्यंचायु मनुष्यायु बन सकती है, परंतु उससे तो इसका विशुद्धि यानी अनुभाग ज्यादा होगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि जो में वो ग बाहर आया है म के साथ लगाने, चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी। अभी इसको संकलेश लेना, यानी मिथ्यात्व के सन्मुख वाला लेंगे। साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट, वो बीच में संकलेश युक्त शब्द रह गया, उत्कृष्ट मिथ्यात्व के अभिमुख हुआ है ना, उक्कस यानी उत्कृष्ट संकलेश युक्त चाहिए
नियम से के बाद में।
हाँ, नियम से जैसे पहली लाइन में सासाधन में कई कैसा लिखा है, साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त मिथ्यात्व के अभिमुख, ऐसे ही साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और मिथ्यात्व के अभिमुख ऊपर भी डालना है प्राकृत में। कहाँ है उत्कृष्ट? वो सम्म मिथ्या में समय 47 नंबर में डालना है। हाँ देखो 47 नंबर का पॉइंट है सेकंड लाइन, सागा जा नियम उक्क संकीली डालना है, संकीली उक्क के बाद संकीली, बाद में मिच्छत्ता भी मुंह लिखा है। देखो देखो एकदम ऊपर की 17 पेज की पहली लाइन देखो, वहां कैसे लिखा है उक्क संकीली, ऐसा ही यहाँ पर सम्मा मिच्छे के नीचे की लाइन सेकंड लाइन, सम्मा मिथ्या दृष्टि में सेकंड लाइन कहाँ देख रहे हो?
हाँ,
सागार जा निय उक्क, उक्क के बाद संकीली। हाँ रह जाता है ना वो लिख, वो तो पहले तो हैंड रिटन होता था, कुछ एक शब्द रह जाता है। तो मिथ्या तो के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म के, अब वो यहाँ तो सम्यक के अभिमुख वाला लेना, उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? साकार जागृत सर्व विशुद्ध सम्यक के अभिमुख और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर चार गति का जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब असंगी में, यानी संगी मार्गना, संगी में तो ओक के समान बताया था, असंगी जीवों में चार घाती कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो साकार जागृत नियम से उत्कृष्ट संकलेश युक्त और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव, क्योंकि असंगी में सभी जीव है ना, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय, उसमें उत्कृष्ट संकलेश तो पंचेंद्रियों के होगा, तो पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब ये सभी पर्याप्तियों से पर्याप्त वगैरह समझ लेना।
शासादन में उत्कृष्ट संकलेश,
अभी आप शासादन में घूम रहे हैं, बोलो
वो एक में जाने वाले को होगा जो एक में उत्पन्न होने वाला है।
उत्कृष्ट संकलेश वाला लिया
नहीं, पर वो उत्कृष्ट संकलेश युक्त जीव एक में ही जाएगा, एकल नहीं जिए
नरक ही जाएगा।
शासादन में नरक तो जाता नहीं है,
नारकी तो शासादन में
नहीं,
नारकी
है, नारकी
कहाँ जाएगा?
सीडियंस में।
तो एक इंद्री में ही आप नियम कैसे बना सकते?
नहीं मनुष्य,
आप नियम बनाने की बात करें, शासन में एक इंद्री में जाने वाले को ही नियम होगा क्या? नहीं, यहाँ चार गति का लिया है तो नारकी तो एक इंद्री में जाता नहीं, तो जिसका जो जहाँ जाने वाला है उसकी चर्चा नहीं करनी। चारों गति को उतने संकलेश हो सकता है, कौन से वाले संकलेश में कहाँ जाएगा उसकी बात होगा। देव है तो एक इंद्रिय में भी जा सकता है। हम नियम ऐसे बनाए कि जो पूरा लागू हो जाए, ऐसे आधे अधूरे नियम बनाएंगे तो उसमें तो दोष आता है ना, जो सर्वत्र लागू नहीं होता है। हाँ हाँ, देखो अभी हम असंगी की बात पढ़ रहे, असंगी में तो पंचेंद्रिय असंगी है वो चार घाती कर्मों का उत्कृष्ट करेगा उत्कृष्ट संकलेश में, और वेदिनीय नाम गोत्र का उत्कृष्ट कौन है? तो साकार जागृत सर्व विशुद्ध और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव उक्त कर्मों के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। यानी संकलेश भी अधिक पंचेंद्रिय को है, विशुद्धि भी अधिक पंचेंद्रियों के। आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? हाँ असंगी मार्गना असंगी सारे तीर्यंच है। देखो आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? तो तत्प्रायग संकलेश युक्त, यानी यह नरकायु बांध रहा है नखी हुआ, और उत्कृष्ट अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव आयु कर्म के उत्कृष्ट अनुभाग बंध का स्वामी है। अब यह दोनों ही पल्ले का असंख्यात भाग बांधते हैं, पर नरकायु वाले अधिक बांधेगा और उसमें संकलेश को लिया है, उसका अनुभाग ज्यादा है। अनाहारक जीवों का भंग कार्मण कायोगी जीवों के समान है, यहाँ पर भी संकलेश ज्यादा किसके हो गए? तो पंचेंद्रियों के हो गए, संगी पंचेंद्रिय चारों गति का लिया था कार्मण योग, कार्मण का योग में चारों गति का लिया था।
विशुद्ध के लिए शब्द सम्यक दृष्टि लेना पड़ेगा,
विशुद्धि में तो तीन घाती कर्म को लेना,
सम्यक दृष्टि को लेना पड़ेगा।
हाँ वह समय दृष्टि कार्मण का योग नीचे से एक असंगी है, क्योंकि मार्गना असंगी है इसलिए यहाँ दोबारा कथन करना दोष होगा।
तो असंगी जीव नरकायु बांध रहे पल्ले का असंख्या के भाग प्रमाण
हाँ देवायु भी मानते हैं पल्लिका संख्या का अनुभव, पर नरकायु का अनुभव ज्यादा है यहाँ पर,
नरकायु की स्थिति भी ज्यादा,
स्थिति भी ज्यादा है। और उन्होंने लिखा है ना संकलेश उक्त ने, नरकायु बाणी से इससे सिद्ध हो जाता है। देखो असंगी मार्गना है तो केवल उनको पंचेंद्रिय इतना ही कहना है, फिर दोबारा असंगी पंचेंद्रिय नहीं कहते। आगे बढ़े, अनाहारक जीवों का भंग कारमान का योगी जीवों के समान है, वो तो हो गया। इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ। अभी तो हम उत्कृष्ट 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 सोच रहे थे। उत्कृष्ट में चार घाती कर्म का है संकलेश सीखना, और तीन अघाती का है विशुद्धि लेना। आयु को तो सोचना कहाँ कौन सी आयु उत्कृष्ट बने। अब जघन्य का प्रकरण है, उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकार का है, ओग और आदेश। ओग से ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म के जघन्य अनुभाव बंध का स्वामी कौन है। अब यहाँ तीन घाती और एक घाती अलग अलग निकालना होगा, क्योंकि ज्ञानावरण आदि तीन का तो सूक्ष्म सांप्राय के अंत में, और मोहनीय का तो नवे के अंत में होगा शपक के। तो ज्ञानावरण, दर्शन, अंतराय कर्म के जघन्य अनुभाव बंध का स्वामी कौन है। अंतिम अनुभाव बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक सूक्ष्म सांप्रायिक जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। वहां तो वेदिनी नाम गोत्र को उत्कृष्ट, हाँ, क्योंकि प्रशस्त कर्मों में ये नियम है। प्रशस्त कर्मों में, सॉरी अप्रशस्त कर्मों में,
हाँ,
क्योंकि स्थिति कम कब बनती है विशुद्धि में। और यहाँ तो अघाती का, सॉरी घाती का, ये अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग भी कम बन जाएगा। यानी सभी अप्रशस्त कर्मों के लिए क्या भी रूल होगा, विशुद्धि में स्थिति भी कम और अनुभाग भी कम। जैसे ज्ञानावरण का उत्कृष्ट संकलेश में स्थिति भी 30 कोड़ा कोड़ी और अनुभाग भी मैक्सिमम। आखिर में देना, लास्ट में देना। उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी। अभी पेज नंबर 18 पर आना। मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जो, यहीं तक वो सूक्ष्म लोक का वहां बंध हो रहे हैं।
हाँ,
तो अंतिम जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर क्षपक अनिवृत्तिकरण जीव मोहनीय कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। अब देखो वेदनीय, अभी उल्टा ऐसा नहीं लेना, वेदनीय का उत्कृष्ट हमने क्षपक को लिया था, तो उसका उत्कृष्ट जघन्य आप संकलेश में नहीं ले सकते, क्योंकि संकलेश में उसकी दूसरी असाता बंधेगी उत्कृष्ट। हमको अभी वहां बीच वाला मध्यम परिणाम वाला लेना पड़ेगा। देखो वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। अन्यतर सम्य दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, दोनों को लिया। परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला जीव वेदनी और नाम कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है।
हम लोग देखते हैं ऊपर ही ज्यादा विशुद्धि रहेगी तो ऊपर ही कम,
पर मध्यम चाहिए ना हमको। क्योंकि साता का या असाता का जो जघन्य है वो मध्यम परिणाम में होता है। ऐसे परिणाम कहाँ तक है, समय दृष्टि के भी, मिथ्या दृष्टि के भी, या अन्य तरीके कोई नहीं मध्यम परिणाम वो वहाँ तक। देखो वहाँ संकलेश विशुद्धि की बात है तो हम संकलेश ज्यादा है मिथ्यात्व में, विशुद्धि ज्यादा है सम्यक में, मध्यम परिणाम जो दोनों में समान हो सकते हैं वहाँ इनका वेदनीय और नाम का जघन्य होगा।
ये वेदनीय और नाम कर्म का जघन्य एकेंद्रिय को और के पच्चे दिन, एकेंद्रिय को और के पच्चे दिन का
ऐसा नहीं लिखा, परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाले इतना ही लिया। वो एकेंद्रिय के होता या पंचेंद्रिय तो विशेष बताते ना, ऐसा कुछ नहीं लिया उन्होंने। अन्य तरजीव
कोई भी जीव तो मध्यम परिणाम में साता और असाता का अनुभव समान बनेगा,
द्विस्थानिक द्विस्थानिक होता है ना।
हाँ, वो बराबर है। हाँ, नहीं, पर दोनों का समान होता है
परिवर्तमान। तो जघन्य का जो अल्प बहुत वह उसमें देख लेना। कल क्या देखने वाले थे ना?
ज्ञानांतर भूत के लिए होता है।
देखा नहीं? देखा नहीं आपने? और क्षेत्र की भी बात देखने वाले थे?
नहीं, क्षेत्र की मैं नहीं देखने वाला था।
मैंने बोला चौथी पुस्तक में होगा, देख लेना।
चौथे पुस्तक में बोला तो वो तो याद
प्रश्न ही याद नहीं आपको? अच्छा है, वहाँ पर रोज वहाँ से देखने को बोलेंगे। कोई भी ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ लिखा ना अन्यतर जीव लिया।
मैं सोचा था कि एक इंद्रिय को एक इंद्रिय की अपेक्षा इतना अनुभव नहीं बनता है, इसीलिए मैंने पूछ लिया।
उसकी बात नहीं आई है ऐसे। तीरियंचो में भी ओके समान बताया
तो पंचेंद्रिय को इतना अच्छा विस्तृत बात पंचेंद्रिय बात
अन्यतर जीव लिया ना। नहीं तो तीरियंचो में पंचेंद्रिय कहते हैं, एक इंद्रिय कहते हैं, ऐसा तो लिखा नहीं है। अभी हम अपनी बात पढ़ेंगे। यहाँ पेज नंबर 18 ऊपर से पांचवी लाइन, आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अन्यतर जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान करते थे लब्धि अपर्याप्त, मध्यम परिणाम वाला, क्योंकि आयु तो मध्यम परिणाम में बनती है, और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित। यहाँ तत्प्रायोगिक विशुद्धि है, तत्प्रायोगिक संकोच ऐसा नहीं लिया मध्यम, क्योंकि हमको जघन्य अनुभाग बंध चाहिए ना। जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित जीव आयु कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। यानी यह मनुष्य तीरेंचे लब्धि अपर्याप्त, क्योंकि कंडीशन क्या डाली है? जघन्य अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, वो तो देवनार के हो नहीं सकते।
तो मनुष्य तीरेंचे आयु दोनों ले सकते हैं यहाँ पे?
हाँ, बांधने वाले भी मनुष्य तीरेंचे लब्धि अपर्याप्त और आयु भी उनकी लेनी। गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का, हाँ न न लब्धि अपर्याप्त, क्योंकि पर्याप्त होने वाला जीव तो वहाँ आयु नहीं बांधेगा अपर्याप्त अवस्था में। उसका अर्थ था लब्धि अपर्याप्त जीव, अपर्याप्त पर्याप्ति से निवृत्तमान करते थे लब्धि अपर्याप्त स्वामित्व। इसमें देखो उत्तर प्रकृति में स्वामित्व जरा देख लो, जघन्य स्वामित्व 212 से आगे। यानी वो तीरियंच आयु को जघन्य लेना कि मनुष्य आयु को जघन्य लेना?
आई थिंक दोनों प्रशस्त है ना, तो दोनों प्रशस्त है।
प्रशस्त है परंतु 213 पर उसमें दोनों में अल्पभूतव अनुभाग का नहीं बताया उन्होंने। दोनों का जघन्य का स्वामी कौन है वो तो बताए,
अल्पभूत उसके पीछे रहेगा
वो तो अल्पभूत दूसरी पांचवी पुस्तक में आएगी। चलो वो मिलेगा जब हम बाद में पढ़ेंगे। 212 नहीं नहीं मैंने तीरियंच आयु का जघन्य, जघन्य में तीरियंच आयु को लेना कि मनुष्य आयु को लेना ऐसा, यानी उनमें अनुभव किसका कम होगा? यहाँ तो आयु इन जनरल लिए और वहाँ एक एक प्रकृति का कौन करता है ये बात, पर दोनों में कंपैरिजन नहीं की यहाँ पर, वो पांचवी पुस्तक में शायद मिलेगी। परंतु उनमें जगन उसमें आयु का अल्पभूत में अनुभाग का अल्पभूत वो किस में होगा? मनुष्य आयु का जगन्य होगा कि तीरियंच आयु का जगन्य होगा? देख लो पांचवी पुस्तक में।
तीरियंच आयु का होना चाहिए क्योंकि तीरियंच आयु का मतलब नीचे वाले
यानी मनुष्य आयु अलिख विशुद्धि में बंधेगी ना। एक आप रखो एक मेरे को दे दो।
दीर्घ आयु का होना चाहिए पर देख लेते हैं।
अल्प बहुतों को देखना पड़ेगा। सन्निकर्ष भंग भागा क्षेत्र का अंतर भाव अल्प बहुत में 220 स्वस्थान अल्प बहुत में देखना उत्कृष्ट जगन ने 224 पेज। आयु में देखने लोभ संज्वलन माया संज्वलन तीर्यंच आयु का सबसे मंद है। मनुष्य आयु का अनुभाग अनंत गुना है। जगन पेज नंबर 225 नीचे से दूसरा पैराग्राफ।
इसीलिए मैंने एकेंद्रिय को लिया
क्योंकि वो प्रशस्त प्रकृति है ना।
एकेंद्रिय में मैं क्यों ले रहा था क्योंकि वो एक सागर के अनुपात में बनती है तो अनुपात भी वहाँ से कम मिलेगा।
एकेंद्रिय का बांधने वालों को उसका होगा पर अन्य जो नरकी जीवों के लिए वो एकेंद्रिय का तो होगा ही नहीं। पर चारों गतियों को हो सकता है ना उतनी संकलेश है ना। आपने उसका रूल बनाना चाहते साधन वाले को नरक गति का कंडीशन मत
डालो।
जो एकेंद्रिय भी जाति बांधता है पंचेंद्रिय भी जाति बांधता है उसकी बात है। तो मेरा प्रश्न ये था सासाधन में बात चल रही थी तो सासाधन में तो एकेंद्रीय जाति बांध नहीं रहा है वो।
तो सासाधन पर एकेंद्रीय में उत्पन्न होने को जा रहा है।
उत्पन्न होगा तब जाके बाद में वो बांधेगा जो कुछ सासाधन में एकेंद्रीय जाति को बांधेगा कि
नहीं बांधेगा
तो ये बात है। तीर्यंच गति बांध रहा है वहां एकेंद्रीय जाति तो बांध नहीं रही। वो तो अभी उत्तर प्रकृतियों में अल्पभूत में बहुत सारी बातें खुलेगी। अभी तो हमारे प्रश्न था हाँ यानी यहाँ जगन्य वो तीर्यंच आयु का जगन्य होगा यानी यहाँ कौन सा बांध रहा है लब्धि अपर्याप्तक जीव बांध रहा है मनुष्य तीर्यंच और वो तीर्यंच आयु बांध रहा है आयु में तीर्यंच आयु का जगन्य है। अब गोत्र कर्म पहले वेदिनी नाम दो को ही लिया था और वो परिवर्तमान मध्यम वाला लिया था
कभी कही 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 कही।
हाँ। और वहां तो वेदिनी नाम में तो समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को लिया था। हाँ हाँ यानी विशुद्धि भी और संकलेश भी ऊपर के जाति वालों को ज्यादा है। देखो गोत्र कर्म की बात रह रहे जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। अभी यहाँ देखो अन्य परिवर्तमान में क्या है साता वगैरह के लिए समय दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों बांधते थे। यहाँ तो मिथ्या दृष्टि नीच गोत्र को बांध देंगे समय दृष्टि उच्च गोत्र को बांध देंगे। अब इसमें मूल प्रकृतियों में जगन्य किसको लेना है ख्याल में थी? देखो यहाँ पर कौन हाँ बांध सकते हैं ना परंतु अभी ओग में जगन्य कहाँ होगा तो गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है। साकार जागृत सर्व विशुद्ध सम्यक्त्व के अभिमुख और अंतिम जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर सातवीं पृथ्वी का नारकी। हमने देखा था जहाँ प्रशस्त प्रशस्त की बात आती है जहाँ प्रशस्त में अनुभाग ज्यादा होता है और प्रशस्त में अनुभाग कम होता है। अब यहाँ हमको उच्च गोत्र से नीच गोत्र का अनुभाग कम जगन्य की बात है ना तो नीच गोत्र को लेना तो नीच गोत्र में भी मिनिमम कौन बांधेगा सर्व विशुद्ध वाला क्योंकि यह अप्रशस्त प्रकृति है सर्व विशुद्ध वाला वो बांधे। पर सर्व विशुद्ध तो समय दृष्टि तो बांधता नहीं है तो मिथ्या दृष्टि सर्व विशुद्ध कब होगा आप कहेंगे सातवें के सन्मुख वाला पर वहां तो उसका बंधापसरण हो गया है। नीच गोत्र का बंधापसरण कौन से स्थान पर होता है प्राय गोलब्धि में 24वें स्थान 23 में तीर्यंच गति थी 24 में नीच गोत्र तीर्यंच गति 23 पर थी नीच गोत्र 24 पर थी। पर यहाँ सातवें नरक का नारकी
वो तो सब में
अरे तो करण लब्धि के अंतिम समय तक निज गोत्र बांध रहा है। हाँ उसका मैक्सिमम विशुद्धि मिनिमम अनुभव किसका? निज गोत्र का, इसलिए उसको लिया। आप कहेंगे अग्नि वायु को भी होगी ना, परंतु एक इंद्रिय की विशुद्धि से वो पंचेंद्रिय की विशुद्धि समेत वो ज्यादा है, विशुद्धि ज्यादा। तो नीच गोत्र का जगन्य वहां पर है और गोत्र में इन जनरल जगन्य वहीं पर लेना। इसलिए वेदिनी नाम में सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि मध्यम परिणाम वाला लिया और यहाँ गोत्र में सातवें नरक का ही नारकी लेना। सम्यक तो अभिमुख है और उत्कृष्ट विशुद्धि वाला है और जगन्य बंद कर रहा है। हाँ नीच गोत्र बांधेगा। देखो सातवीं पृथ्वी का नारकी ये ना मिथ्या दृष्टि जीव गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। हाँ हम गोत्र यहाँ तो मूल प्रकृति की बात चल रही है, इसमें से जिसका मिनिमम होगा उसको लेना है। वेद ओघ में हम वेदनीय नाम की जो है बात करते थे उसका उत्कृष्ट कहाँ था? तो क्षपक। अब वेदिनी नाम में जगन्य किसका होगा? तो मध्यम परिणाम वाले। गोत्र में जगन्य किसके होगा? नीच गोत्र का जगन्य होगा। वो किसके होगा? सातवें नरक के नारकी को होगा, क्योंकि पंचेंद्रिय है और सर्व विशुद्ध है फिर भी नीच गोत्र बांध रहा है। तो ये सातवें नरक का नारकी सम्यक तो के सन्मुख वाला है। इसी प्रकार ओघ के समान पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, क्योंकि वो ज्ञानावरणादि का तो शपक श्रेणी में वो भी घटित होना चाहिए और बाकी सब भी घटित होना चाहिए। तो पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय पर्याप्त, त्रस त्रस पर्याप्त, पांच मनोयोगी, पांच वचन योगी, काय योगी, काय योगी इतना ही लिखा। औदारिक काय योगी लिखते तो क्षपक प्रकृति घटित होगी, पर वो नीच गोत्र वाली बात नहीं घटित होगी। लोभ कषाय वाले, क्योंकि लोभ कषाय वाले भी सूक्ष्म सांप्राय तक है, वहां पर भी यही बात घटित होगी सब जगह। चक्षु दर्शनी, उक्षु बराबर लिखना। और चक्षु दर्शनी भव्य संगी और आहारक जीवों के जानना चाहिए। ओघ के समान इनमें भी यही बात घटित हो जाती। आगे बढ़े, अभी कुछ प्रश्न चल रहे मन में? नहीं, अच्छा। नारकियों में अभी हमको हमेशा सोचना है कि जहाँ विशुद्धि कब ज्यादा हो। चार घाती कर्मों के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? उग में कहाँ देखा था?
शपक
के। अब यहाँ चौथे गुणस्थान वाले को सर्व विशुद्ध अवस्था में देखना पड़ेगा। तो साकार जागृत सर्व विशुद्ध और जघन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर असंयत समय दृष्टि जीव उक्त कर्मों के जघन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। न न असंयत समय दृष्टि चौथा गुणस्थान सातवें नरक तक कोई भी समय दृष्टि नारकी उतनी विशुद्धि वाला लेना। यानी पहले नरक का होगा चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं का भी होगा। वेदनीय नाम और गोत्र कर्म का भंग ओघ के समान है, यानी मिथ्या दृष्टि या समय दृष्टि मध्यम परिणाम वाला वगैरह वगैरह। आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? अभी जगन्य अनुभाग मिनिमम आयु बांधने वाला लेना है। तो जगन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, अपर्याप्त निवृत्ति नहीं कहा, पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्तमान, यानी पर्याप्त जीवन। हाँ, और मध्यम परिणाम वाला अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव आयु के कर्म के नहीं, आयु कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी है। के नहीं चाहिए।
तो यहाँ तो इसीलिए
ये अंतर्मूर्त वाली आयु बांधता है ना मनुष्य के लिए चाहिए।
तो ये जगन्य पर्याप्त निवृत्ति बताई वो नारकी के लिए बताई, तो वो जगन्य काल में पर्याप्ति पूर्ण करेगा तो उसमें आयु का तो लास्ट सिक्स मंथ से बंद होता है, तो यहाँ पे जगन्य पर्याप्त निवृत्ति की बताए,
वो पर्याप्त जीव बस इतना बताना था और कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं
का कोई मीनिंग नहीं।
हाँ आपका प्रश्न,
यहाँ पर जो जगन्य आयु बांधेगा सातवें नरक का नारकी, तो उसकी जगन्य आयु कितनी हो सकती है?
अंतर्मूल पहले से सातवें नरक तक के नारकी मनुष्य आयु, सातवा का तो मनुष्य बांधता नहीं, तीर्यंच आयु, यहाँ पर भी तीर्यंच आयु का जगन्य होगा, मनुष्य आयु से तीर्यंच आयु का जगन्य होगा।
पर्याप्त बताए ना, पर्याप्त जीव बताए, ये क्या लिखा?
अंतर्मूल के आयु बांधते है वो,
पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मानिया ने, वो पर्याप्त ही होगा ना,
नारकी पर्याप्त ही होते हैं।
अच्छा वो नारकी के लिए नई आयु बांधेगा उसके लिए?
उसके लिए नहीं, पर्याप्ति का काल छोटा होने से उन जब वो आयु बांधने वाले उसमें क्या फर्क
है? वही मेरा सिस्टम तक आयु तो लास्ट सिक्स
अंतिम छह महीने में वो आयु बांध रहा है
नहीं, पर यहाँ पे जगन्य पर्याप्त निवृत्ति बताई है उसका भी कोई कि उसको जगन्य बंद हो सकता जगन्य
मध्यम परिणाम वाला अन्यतर मिथ्या दृष्टि जीव आयु के आयु कर्म के जगन्य अनुभव बंध का स्वामी है।
तो जगन्य निवृत्ति से पर्याप्त हुआ है उसको ये जगन्य अनुभाग बन सकता है, फिर बताना चाहते
वो पर्याप्त निवृत्ति का अर्थ ख्याल में नहीं आया बराबर।
मैंने वही पूछा था ना कि आयु तो अंतिम छह महीने में बनती है और मिनिमम आयु तो 10,000 वर्ष की हो, तो जगन्य निवृत्ति पर्याप्त से जब पर्याप्त
इसी प्रकार सातवीं पृथ्वी में जानना चाहिए, ऐसा बताए ना, अभी वहाँ 10,000 वर्ष की कहाँ बात है,
वो तो आयु तो अंतर्भूत की बात है, पर जगन्य पर्याप्त निवृत्ति से पर्याप्त हुआ जीव
वो सबके लिए लागू है,
वो सबके लिए लागू होता है,
इसी प्रकार लिखा है ना, वो आयु में वो उन्होंने जगन्य के लिए जगन्य पर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान या अपर्याप्त निवृत्ति से निवृत्त मान इतना ही बताया और कुछ नहीं। अंतर्मूर्त की तीर्यंच आयु होगी यहाँ पर, क्योंकि तीर्यंच आयु में जगन्य होगा मनुष्य आयु से,
मनुष्य आयु का अनुभव।
ऊपर की अन्य पृथ्वी में भी वही भंग है, इतनी विशेषता है कि गोत्र कर्म के जगन्य अनुभाग बंध का स्वामी कौन है? हाँ तो कहते परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्या दृष्टि जी, मिथ्या दृष्टि को लिया
वहाँ पे हम लोग ने साता वेद्य और अरे वेद्य और नाम कर्म में हमने समीप दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों लिया था, तो यहाँ पे गोत्र कर्म में जगन्य अनुभाग मध्यम परिणाम
देखो ऊपर क्या लिखा है, पहले क्या बात,
छठे नरक की बात,
पहले ऊपर क्या बात थी, वेदी ने नाम गोत्र सबको लिया, ओग के समान है, ओग के समान का अर्थ क्या है, वेदी ने और नाम के लिए सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों को लिया, और गोत्र कर्म की तो सातवें नरक का नारकी तो ओग में भी बताया था, तो यहाँ पर भी घटित हुआ, सामान्य नारकी में भी घटित हुआ और सातवें नरक के नारकी के लिए भी घटित हुआ, तभी गोत्र कर्म के लिए एक से छह नरक के नारकियों में क्या समझना, तो ये बात है, ओग में भी सातवें नरक का नारकी लिया, सामान्य नारकी में भी सातवें नरक का नारकी लिया गोत्र का जगन्य के लिए, और सातवें नरक के नारकी के लिए तो होता ही होता है वही जगन्य। अब बात रही एक से छह नरक के नारकियों के लिए गोत्र का जगन्य कौन करेगा,
ये तो नीच गोत्र का ही हो जाएगा
ना? नहीं मध्यम परिणाम जैसे साता साता का लिया,
मनुष्य के साथ नीच गोत्र उच्च गोत्र भी बनता है, तो
मिथ्या दृष्टि लेना पड़ेगा, वेदनी और नाम के लिए सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों लिया, गोत्र के लिए मिथ्या दृष्टि, क्योंकि उच्च और नीच गोत्र दोनों ही मध्यम परिणाम में जगन्य बांध रहा
है। नहीं पर मनुष्य के साथ मध्यम परिणाम में जो नीच गोत्र बनता है,
आप क्या कह रहे, परिवर्तमान मध्यम यानी जहाँ से जैसे साता भी बनती है असाता भी बनती है, जिन परिणामों से जैसे उच्च गोत्र भी बनता है नीच गोत्र भी बनता है ऐसा लेंगे, उसको परिवर्तमान कहते हैं।
नीच गोत्र बनेगा ना,
देखो यहाँ पर देखो दोनों ही बनते, परिवर्तमान मध्यम परिणाम वाला और जगन्य अनुभाग बंध में अवस्थित अन्यतर मिथ्या दृष्टि जीव, गोत्र कर्म के जघन्य अनुभाग बंध का संग, क्योंकि परिवर्तमान उसी के होगा। समय दृष्टि तो मात्र उच्च गोत्र बांधेगा, मिथ्या दृष्टि मात्र नीच गोत्र बांधे है, सॉरी नीच सातवें नरक का, यहाँ दोनों बनते उसके।
तो परिवर्तमान जहाँ पे बताया वहाँ पे दोनों प्रकृति
दोनों बनते। अब ये तिरंजा को कल शुरू करेंगे ना, क्योंकि नई मार्गना है। हमने यहाँ कर्मकांड की 187-188 कुछ लिख के रखा है। इतनी विशेषता है कि जरा कौन सा पेज लिखा है वो कर्मकांड 188 का मैंने रेफरेंस लिखा, जरा निकालो अभी 2-3 मिनट है ना। कर्मकांड लाल कलर की है, पर 187 यानी ब्लू में होगा, ब्लू ब्लू वो जो व्हाइट पेपर लगा है ना लास्ट उधर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में लाल के लेफ्ट में जाओ, ये सारे व्हाइट कवर वाले हैं, बिना कवर वाले, उसके बाद में हाँ वो, और वो बाहर जो पेपर लगा है वो मेरी है।
दोनों पर
देख लो, देख लो 187। हाँ ये परिवर्तमान किसको कहेंगे इसकी बात है। पेज नंबर 187 कर्मकांड पर लिखा है, मिला क्या आपको? ये मेरी वाली पुस्तक है ना, हाँ वो ढूंढारी वाली नहीं है। देखो यहाँ नीचे का जो पैराग्राफ है ना वो बोल्ड लिखा है, उसके ऊपर की लाइन यहाँ अपरिवर्तमान मध्यम परिणाम और परिवर्तमान मध्यम परिणाम का लक्षण कहते हैं। देखो ये जघन्य अनुभाग की बात है सब, उसके ऊपर का पैराग्राफ पहले देख लो, अभी है 2 मिनट। स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यश कीर्ति अयश कीर्ति, साता असाता, ये 8 प्रकृतियां अपरिवर्तमान मध्यम परिणामी सम्य दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दोनों के जघन्य अनुभाग सहित बनती। उच्च गोत्र 6 संस्थान 6 सहनन, प्रशस्त अप्रशस्त विहाय गति, मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी, देवगति देवगत्यानुपूर्वी, सुभग दुर्भग, आदेय अनादेय, 23 प्रकृतियां परिवर्तमान मध्यम परिणामी मिथ्या दृष्टि जीव ही के जघन्य अनुभाग सहित बनती है। यानी उसमें भी कौन सी वो बताए, अभी नीचे परिवर्तमान मध्यम और अपरिवर्तमान मध्यम की बात बता रहे। अनुसमयम अभी डायरेक्ट उसका नीचे का अर्थ देखते हैं, प्राकृत में नहीं पढ़ेंगे। अनुसमय ने प्रति समय, केवल वर्धमान अर्थात बढ़ते ही जाए और हीयमान अर्थात घटते ही जाए, ऐसे जो संक्लेश रूप और विशुद्ध रूप परिणाम है वे अपरिवर्तमान कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ परिणाम पलटकर उल्टा नहीं आता। और जिस परिणाम में स्थित होकर और परिणामांतर को प्राप्त होकर किसी एक परिणाम से पलटकर उसी परिणाम को प्राप्त होना शक्य है, यानी कंटिन्यूअस में अंतर्मूर्त तो विशुद्ध विशुद्ध ही होता है, या जगन्य जगन्य हीयमान हीयमान होगा वो अपरिवर्तमान, और परिवर्तमान एक समय से पलट जा सकता है, वापस उसी परिणाम को आ सकता है, उसको कहेंगे परिवर्तमान, क्योंकि यहाँ परिणाम पलट कर उल्टा है।
तो परिवर्तमान परिणाम में प्रशस्त दोनों बन सकती है।
हाँ अभी यहाँ बहुत विस्तार से बताया है, अभी इसको तो छोड़ देते हम, यह अनुभाग बंद की 2-3 पेज में ही अगर आप मूल प्रकृतियों में उन्होंने बताया है 189 से, चाहे तो कल पढ़ के आना।
ये पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा,
नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलो अभी हम यहाँ रुकते हैं, कहाँ पेज नंबर कौन सा था हमारा, 18 नंबर पर थे ना, तिरंजों में पढ़ना हमारा कल शुरू करेंगे। चावानी के ज्ञान ते सूझे लो पालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो।